ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, पड़ोसी देशों के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
हाल ही में भारत की नवगठित एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला है और हाल ही में ही प्रधानमंत्री सहित एनडीए सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की और रविवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। और इस आयोजन की ये विशेषता रही कि इसमें भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मंत्रियों ने शिरकत की थी। इनमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, यहां तक कि सेशेल्स, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए थे। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत प्राथमिकता के तौर पर अपने पड़ोसी देशों के संबंधों को रखता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तो इसमें पड़ोसी प्रथम की जो भारत की नीति है उसको भी दोहराया। तो आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी है, संबंध है, वो कितने आवश्यक हैं और किस तरह से भारत इस दिशा में लगातार इन संबंधों को प्राथमिकता पर रखता रहा है। हमारे साथ चर्चा में दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत का और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
अनिल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से मैं चर्चा को शुरू करूंगा। जैसा कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा था कि जो इस समारोह में हिस्सा बने दुनिया के जो देश हैं, जो अतिथि आए हैं, उनके वे आभारी हों और विश्व बंधु के रूप में भारत हमेशा उनके निकट साझेदारों के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करता रहेगा। सबसे पहले इस संबोधन पर आपकी टिप्पणी और जो जिस तरह से उन्होंने शिरकत की थी, क्या सिग्निफिकेंस, क्या एक प्रतीकात्मक महत्व रहा जो शपथ ग्रहण समारोह में भारत के निकटतम देश आए।
कमल जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, जिसको मैं कहता हूं कि दे आर द गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी बट समटाइम्स कैन बी पेन्स ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे भी दो हमारे नेबर्स हैं जिनके साथ समस्याएं हमारी हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं हमारे, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो और श्रीलंका, जिसके प्रतिनिधि यहां आए थे, वो प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार 2014 में प्रभार संभाला था उस वक्त एकदम आउट ऑफ बॉक्स उनका ये सोल्यूशन रहा कि चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि इन सब देशों की सीमाएं हमसे मिलती भी हैं, तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें बुलाना है। और सबसे पहली बार जब उन्होंने उनके साथ बुलाया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किया, तो हम ये देख रहे हैं कि उस तब से भारत ने अपनी तरह कटिबद्ध रहा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके से प्रोग्रेस हो, उनमें वही बातें जो भारत अपने बारे में कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही बातें उन कंट्रीज के साथ भी लागू होती हैं। कारण यह है कि आज की डेट में भारत उन मुल्कों के लिए सबसे ज्यादा अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कैपेसिटी बिल्डिंग। और जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसियों को पहली पॉलिसी है, उसका सबसे बड़ा यही कार्य है कि हम एक नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी अपनाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए। इसमें तीन और देश इस बार शामिल हुए हैं, जिसमें मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव्स। ना मालदीव्स के साथ हमारी कुछ समस्याएं आपने देखा कि जब से ये नई सरकार आई है तो हुई है, लेकिन अगर आप ये देखें ये तीनों देश हमारे भारत के लिए इंडियन ओशन में हमारा जो सागर प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उस सब के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़ी सोच समझ के प्रधानमंत्री जो इस बार फिर से इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को या राष्ट्रपतियों को बुलाया है, ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे एक मैसेज कन्वे हुआ है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा खड़ा है। तो वो प्रधानमंत्री ने कहा ही है, क्योंकि ये सारे देश जो हैं एक डेवलपमेंट के उस कगार पर हैं जहां पर उनको अभी और आवश्यकता है। तो ये हमने दिखाया, आपने विश्व बंधु की बात की, तो हमने देखा कि जिस वक्त पेंडेमिक हुआ था कोविड-19 का, तो भारत ने अपने सारे देशों, सार्क के सारे देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सबको बुलाकर सबको असिस्टेंस प्रोवाइड किया, टेक्निकल, मेडिकल, जिस तरह का भी पॉसिबल था वो दिया गया, एक फंड भी क्रिएट किया गया। तो हमेशा से भारत ने जो भी जरूरतें हैं उनकी, उनको पूरा एक तरह से मैं कहूंगा प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया है हमारे मार्केट्स के लिए, और उनको जो भी उनके डेवलपमेंटल जर्नी में आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है।
अतुल जी, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के लिहाज से बात करें तो किसी भी पड़ोसी देश के लिए पड़ोसी देश का संबंध इस तरह से अहमियत रखता है कि या तो उसका समुद्री क्षेत्र उससे निकट होता है या उसकी जमीन उससे लगती है। तो भौगोलिक दृष्टि से पड़ोसियों का तो सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है जब भी हम किसी कूटनीति या विदेश नीति की बात करते हैं। तो इन देशों में अगर हम बात करें जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये देश आते हैं, तो भारत किस तरह से अपने देशों में भौगोलिक नजरिए से देशों के साथ संबंधों को देखता है? और खास तौर पर जो देश इस बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जिसमें कि अभी अनिल जी ने चर्चा की, सेशेल्स, मालदीव और मॉरिशस की खास तौर पर, तो किस तरह से इन देशों का एक रणनीतिक साझेदारी का महत्व भारत के साथ आपको नजर आता है?
कमल जी, ये जो देश आपने गिने हैं, भारत का एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है इन देशों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस गाड़ी को आगे बढ़ाना है।
बिल्कुल।
और उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि हमारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटीग्रेट करते हैं हमारे नेबरहुड को, उसको पूरी इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है।
बिल्कुल।
अब जैसे भूटान की बात करें तो हमारा वो ब्रिज एक बन रहा है, धुबरी फूलबारी ब्रिज, 17 किलोमीटर का ब्रिज है जो भूटान को कनेक्ट करेगा आसाम से, और आसाम से हम उसको आगे ले जाएंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश में भी एक पोर्ट बन रहा है मातरबारी। तो एक तरह से अगर ये जब ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो जाता है तो एक स्ट्रक्चरल लिंकेज बनती है हमारी और मजबूत होती है हमारी स्थिति। सिर्फ फिर वो इमोशनल ट्रेड इन चीजों के बाद नहीं होती, लेकिन एक तरह से एक सीरियस लेवल पे आपकी एक इंटीग्रेशन होती है। और अगर भूटान को हम जोड़ते हैं, स्ट्रक्चरली जोड़ते हैं इस तरफ साउथ एशिया की तरफ, तो उतना ही चीन जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है भूटान को, उतना वो कमजोर पड़ेगा इसको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो एक तरह से जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कनेक्टिविटी की करें, बांग्लादेश के साथ तो हमारा चल ही रहा है, त्रिपुरा से हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो पुराने रेल लिंक्स हैं वो हो रहे हैं बांग्लादेश से, बल्कि हमारे आगे साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारे लिंक्स आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से आगे फिर आसियान कंट्रीज के लिए जो एशियन हाईवे बन रहा है। तो एक तरह से भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, आसियान थ्रू थाईलैंड, हम सब कनेक्ट होते हैं। तो ये अब काम है ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को करने का, साथ साथ एनर्जी पाइपलाइंस की जरूरत है जो साथ में जुड़े हैं। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका पाक स्ट्रेट के उन्हें ब्रिज की जरूरत है ताकि श्रीलंका जो है स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट हो भारत के साथ पूरी तरह से। अभी फेरी सर्विस हमने शुरू की है श्रीलंका के साथ, जाफना एरिया वगैरह के साथ, लेकिन मुझे लगता है एक कॉरिडोर, एक तरह से एक ब्रिज की जरूरत है जो जोड़े श्रीलंका और हमें। तो ये हमारे ये कुछ देशों के साथ तो ये काम अभी बाकी है। बाकी रही बात मालदीव्स की और सेशेल्स की, अब अगर देखा जाए तो सामरिक नजरिए से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनिल जी ने कहा कि स्ट्रेटेजिक मूव थी प्रधानमंत्री की इनको आमंत्रित करने के लिए, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरह से जो चीन का रवैया है, चीन जिबूटी में एक बेस बनाया हुआ है, तो उस तरह से ये जो आइलैंड टेरिटरीज हैं ये बहुत जरूरी है हमारी एक तरह से छवि को बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन के लिए, और फिर आगे फिर इंडियन ओशन में ही है, मगर अब सेशेल्स के आगे जाए तो फिर अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट लगती है। तो अब टाइम आ गया है कि ये जितने भी हमारे डॉर्मेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको तेजी ली जाए और स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी हमारी साउथ एशिया और बियॉन्ड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नेबरहुड फर्स्ट की बात की गई है वो उसको आगे करें उस डॉक्ट्रिन को, और जो इंडियन ओशन की तरफ है उन कंट्रीज जहां पर हमारा डायस्पोरा है उनसे और हम जुड़े। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अब टाइम आ गया कि फिजिकल कनेक्टिविटी और जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं उस पर हमारी जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट वगैरह हो हर तरह की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, जियो इकोनॉमिक हो या जियो पोलिटिकल हो, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगले 5 साल में अगर हम ये काम कर पाए तो हम बहुत आगे बढ़े।
अनिल जी, जैसा कि अतुल जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से व्यापारिक और कनेक्टिविटी बड़ी अहमियत रखती है पड़ोसी देशों के साथ, जिस पर भारत के लगातार कई परियोजनाओं में कदम दिखाई भी देते हैं, आप अपने राजनयिक अनुभवों से भी हमें विस्तार से बताएं कि किस तरह से कनेक्टिविटी या एक तरह से कहें कि व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी पड़ोसी देशों के साथ मजबूत करना एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। किस तरह से खासतौर पर जो दक्षिण एशियाई देश हैं या पड़ोसी देश हैं, इस संदर्भ में साझेदारी, व्यापारिक और कनेक्टिविटी की साझेदारी बड़ी अहम है। यहां पर हम बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का जो एक समूह है उसका भी उदाहरण आप चाहेंगे कि उसके बारे में आप विस्तार से बताएं, जो एक समूह बना है जिसमें कि जो मोटर व्हीकल्स, वाटर पावर है या जो वाटर मैनेजमेंट है और जो एक इंटरग्रिड पूरा कनेक्टिविटी का बनाया गया है उस पर फोकस रखा गया है, और इस तरह से एनर्जी की जैसे अतुल जी चर्चा कर रहे थे तो ऊर्जा को लेकर भी साझेदारी के भारत के पड़ोसी देशों के साथ प्रयास जारी हैं। तो ऐसी परियोजनाओं को शुरू करके किस तरह से हम कूटनीतिक स्तर पर संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं?
जो अतुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक तो हमारी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दूसरी है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो भारत ने दोनों का मिश्रण भी किया है। उसका कारण ये है कि जो सार्क देश हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान की एक टेररिज्म को सपोर्ट करने की भारत के खिलाफ पॉलिसी है उसके चलते सार्क एक तरह से, हालांकि सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था और भारत ने 90% तक की एक्सेस, मार्केट एक्सेस इन कंट्रीज को प्रोवाइड करी है, लेकिन उस सबके बावजूद भी अगर आप देखें तो सार्क में इंट्रा सार्क ट्रेड जो है वो काफी कम है कंपेयर टू दूसरे जो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, रीजनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सर्टेन लिमिटेशन तो है ट्रेड की, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी नहीं है और एक तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं। बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल में बहुत आगे है, तो भारत भी टेक्सटाइल में बहुत आगे। रही बात तो इन मुल्कों में, भारत ने सबसे बड़ी बात किया है कि जो उनकी लोकल कैपेसिटीज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की हो, चाहे उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज हो, उन सबको बढ़ाने में काफी मदद करी है। अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम इनको असिस्टेंस देते हैं सारे कंट्रीज को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन कंट्रीज के अंदर रख देते हैं। तो आज की डेट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक साथ काम करते हैं दोनों। तो एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि बीवीआईएन चार जो देशों की बात आपने कही, अब चूंकि सार्क नहीं चल पा रहा ठीक तरह से, पूरा उसका जो फलीभूत नहीं हो रहा है उसके जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के कारण खासतौर से, तो भारत ने एक सब रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म शुरू करी जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया है चारों। इसमें हमने देखा है कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने एनर्जी की बात भी कही, तो अब देखिए भूटान हाइड्रो एनर्जी में बहुत बड़ा है आगे, नेपाल काफी उसके अंदर बड़ा है, बांग्लादेश को जरूरत है पानी की, हालांकि उनके पास गैस है, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब तक हमारी और नेपाल के बीच में एक समस्या थी कि किस तरह पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाए, किस तरह सरप्लस पावर किया जाए, वो सब चीजें जो है सॉर्ट आउट हो गई है सारी। तो इससे चारों देशों को इसमें काफी बड़ा फायदा है और चारों को इससे जो है एनर्जी की पूरी मात्रा मिल पा रही है, तो ये एक अच्छी बात मैं समझता हूं हुई है। दूसरा, भारत ने जगह जगह इन सब में इनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी जो बेसिक कैपेसिटीज हैं वो बढ़ें, और वही हमारी अब तक की हो रही। दूसरी चीज रही, हमारा एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन किया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है। इसके बारे में अतुल जी ने भी जिक्र किया अबाउट एशियन कॉरिडोर का, तो वो म्यांमार के थ्रू के जाता है, तो उसमें म्यांमार और थाईलैंड शामिल है बेसिकली, इन चार देशों के अलावा, तो श्रीलंका इसमें है। तो बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन बोलते हैं उसको, अब 25 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह डोरमेंट रहा और लेकिन धीरे धीरे भारत ने देखा उसको आगे बढ़ाया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसका जो पूरा डेवलपमेंट है, जो उसकी पूरी प्रोग्रेस है, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से जो लीडर्स हैं सबको ये कहा कि भाई हर बार नॉर्थ ईस्ट में जाकर के विजिट होने चाहिए ताकि वहां कंटिन्यूड फोकस हो। जापान के साथ भी हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो ये इस तरह की कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जो है उसमें भारत का काफी बड़ा फोकस है, चाहे वो हमारे साउथ एशिया के अंदर हो या एक्ट ईस्ट के साथ हो या वेस्ट एशिया के साथ। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी सेक्टोरल पॉलिसी, हम जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोल दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, लिंक वेस्ट पॉलिसी कर दिया, एक चीज हमें भारत में मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए सरकार को भी और जो भी इसमें है कि हमें अब अपनी एक एशिया फर्स्ट पॉलिसी होनी चाहिए
जी
पूरे एशिया के बारे, और उसके साथ साथ सेक्टोरली जिस जिन कंट्रीज का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चलते रहे, एक ग्लोबलिस्टिक एम्बिशन। वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें अगर हम अब कहें लिंक वेस्ट है, आप सेंचुरी से आप लिंक करे हुए, आज एक्ट वेस्ट का टाइम है। फॉर्चुनेटली मोदी जी के टाइम पे वहां पर काफी काम हुआ है और आज वो वाकई में नेशनल एक्ट वेस्ट पॉलिसी है। तो ये मैं समझता हूं होलिस्टिक पिक्चर हमें एशिया फर्स्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
अतुल जी, आपने जिक्र किया था कि किस तरह से जो चीनी प्रभाव है उसकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है, ऐसे में अगर हम जब सहयोग की बात करते हैं पड़ोसी देशों के साथ तो इसमें हिंद महासागर का जो पूरा क्षेत्र है इसमें चीनी प्रभाव को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिहाज से किस तरह से आप इन संबंधों की अहमियत को देखते हैं, कैसे ये संबंध भारत के जो रणनीतिक हित हैं उनकी पूर्ति करते हैं?
ये जो चीन की बात की है ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि चीन वर्ल्ड की ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आगे बढ़ रही है और वो बढ़ेगी, और साथ साथ एक चीन एक बड़ी मिलिट्री पावर भी है तो हमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट चीन के साथ चाहिए, लेकिन साथ साथ उसकी मिलिट्री पावर को रोकना चाहिए। हमारे जो स्फीयर है, जो जैसे हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं या इंडो पैसिफिक की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स एक रिलेशनशिप रहेगा। मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई और चाह रहा है एंगेजमेंट के सिवाय। बॉर्डर इशू जो चीन के साथ है, हमें वो रिजॉल्व करना है। और विदेश मंत्री जयशंकर ने कल ही मुंबई में कहा है कि वो एक ऑब्स्टेकल है जो हमें रिजॉल्व करना है। एक बार वो ऑब्स्टेकल होता है तो चीन के साथ दरवाजा खुलता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह। ट्रेड तो हमारी वैसे भी बहुत चल रही है चीन के साथ, 100 बिलियन के ऊपर ट्रेड चल रही है, बट एक नॉर्मल रिलेशनशिप वहां बनेगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि एशियन सेंचुरी में अनिल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं, मुझे लग रहा है लेकिन यूरेशियन सेंचुरी आ रही है, क्योंकि उसके साथ साथ अगर हम देखें अफगानिस्तान की आपने बात की, अब ईरान अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट का अब हम जो है नेतृत्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, ये कुछ ही दिन पहले की बात है, और वहां से कॉरिडोर ऊपर जा रहा है नॉर्थ, एक रोड बनी हुई है अफगानिस्तान से, फिर वो सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकती है। तो यूरेशिया की एंगेजमेंट हमारी शुरू हो रही है ईरान के थ्रू, और साथ साथ उसके हमारे साथ जा रहा है रूस के साथ संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे जिस तरह से हमने तेल का आयात शुरू किया है रूस से, और भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, निकल है, ये आयरन ओर, ये छिपी रही बातें, लेकिन कुछ हाल ही के कुछ 6-7 महीने में ये बहुत इसमें वृद्धि हुई है। अब करेंसी के ऊपर हमारी डीडॉलराइजेशन के ऊपर बात हो रही है, तो एक तरह से हमें बिग पिक्चर में चलना है। साउथ एशिया इज पार्ट ऑफ द बिगर यूरेशियन पिक्चर, और जिसमें यूरेशिया में एशिया का पार्ट जो है वो क्रिटिकल है। तो ये एक तरह से नेक्स्ट हमारा जो, और साथ में इंडियन ओशन जुड़ता है, तो ये चैलेंजेस सामने हमारे आ रहे हैं। आपने एक बात की थी पावर की, मुझे बहुत उसमें दिलचस्पी है। जैसे नेपाल पावर सरप्लस है, नेपाल से बांग्लादेश की तरफ बात हो रही है कि उनको एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो वाया इंडियन कॉरिडोर होगी। तो एनर्जी ग्रिड जो है ये साउथ एशिया में बन रहा है, और हमारी जो ईरान के साथ रिलेशनशिप बन रही है वो आउटरीच टू सेंट्रल एशिया और रशिया की तरफ जा रही है। तो ये बड़े दिलचस्प और एक तरह से चैलेंजिंग तो है ही है, लेकिन बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। ये तो हमें जरूरत है बोल्ड खेलने की, मतलब छोटा नहीं सोचना, क्योंकि G20 के बाद भारत ने अनाउंस किया कि वो एक तरह से एस्पिरेशन है हमारी, एक तरह से ग्लोबल पावर बनने की एस्पिरेशन है, वो जरूरी है। जब तक एस्पिरेशन नहीं और उसको, लेकिन एक्चुअली ठोस पॉलिसी और एक्शन से उसको जब तक नहीं करेंगे तो सिर्फ वो सपना ही रह जाएगा।
जी,
लेकिन टाइम आ गया कि हम बड़ा सोचें एशियन सेंचुरी और यूरेशियन सेंचुरी।
जी अनिल जी, भारत हमेशा से ही क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करता रहा है, और इस मामले में एक रीजनल उसकी एस्पिरेशन हम कह लें कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका के रूप में भारत खुद को देखता है। क्या इन संबंधों को, जो कि पड़ोसी देश के साथ संबंध है, उनको बेहतर साधकर भारत जो क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रतिनिधि के तौर पर या अपनी एक अहम भूमिका के तौर पर इस मामले में सामने आ सकता है?
जैसे जैसे भारत का ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ता है, वैसे वैसे आपके जो नेबर्स हैं या दूसरे देश हैं, उनको भी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती हैं।
बिल्कुल।
तो उसमें क्या रोल आप एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में करेंगे, उसमें भारत का प्लस पॉइंट यह है कि भारत जो है किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर हो, इमरजेंसीज हो, इवैक्यूएशंस हो, उन सब में भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभरा है, जो एक बेनाइन प्रोटेक्शन है पावर का। और वो चाहे कहीं देखिए, अभी हूती अटैक्स हुए वहां पर हमारे जो शिप्स हैं नेवी, वो प्रोटेक्ट कर रही है पूरा वहां से, तो उससे लोग जो कमर्शियल शिपिंग है उनको, तो उससे लोगों को जो दूसरे मुल्कों के देश हैं वो देखते हैं। लेकिन अगर आपके इमीडिएट नेबरहुड जो है उसमें जो है किसी तरह से एक कहीं ना कहीं एक बिग ब्रदर सिंड्रोम जो प्रवेल करता है, जो भारत को ये देखता है कि भारत इतना बड़ा है, इतना पावरफुल कंट्री है, इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतना बड़ा है, तो उससे उनके यहाँ पर जो कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें शंकाएं पैदा होती हैं। तो इसलिए आप अगर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर जरूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योरिटी बहुत तरह की होती है। और आजकल टेक्नोलॉजी के साथ तो सिक्योरिटी का बिल्कुल ही एक्सपेंड हो गया है। किसी कंट्री को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी उस कंट्री के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। तो भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आयाम पैदा किया है, एक तरह का मैं कहूंगा स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया है, जो G20 में भारत ने बताया सब दुनिया को। तो उस सब चीजों का बड़ा लोगों को, कंट्रीज को, हमारे जो नेबर्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, तो हमें अपनी एक कंप्रेहेंसिव पावर इस तरह की बनानी है जो बेनाइन कंप्रेहेंसिव पावर हो। और डिफेंसिव, भारत की यही पॉलिसी रही है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो डिफेंस कहलाती है, ऑफेंसिव नहीं है। हम किसी देश के ऊपर किसी की उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं अलाउ कर सकते कि दूसरा कोई मुल्क हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करे या उसके ऊपर कुछ घात लगा के बैठा रहे। तो भारत को इमर्ज करना ही है और जैसे जैसे भारत विकसित भारत बनेगा, लेकिन एक बात तो सही है कि जो हमारी पॉलिसी है कि भाई हमें सबको लेकर के चलना है साथ, क्योंकि अदरवाइज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आपके दाएं बाएं होते हैं और उसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है।
बिल्कुल,
तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपना नेबरहुड को एक साथ लेकर के चलना।
और इसी संदर्भ में एक और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उभरने के प्रश्न को मैं अतुल जी आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हुआ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, ऐसे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर भारत नेतृत्वकारी भूमिका के लिए, भारत के लिए जरूरी है कि जो पड़ोसी देश हैं वो उनके साथ संबंध बेहतर हो, तो किस तरह से पड़ोसी देशों का समर्थन इस मामले में भारत के लिए बहुत उपयोगी आपको नजर आता है?
ये बहुत उपयोगी है क्योंकि ग्लोबल साउथ के आउटरीच तो हमने डिक्लेयर कर दिए G20 के समय कि उसके अब लीडर भी बनना चाहते हैं। बिनाइन लीडरशिप एक बहुत जरूरी है, जो अनिल जी ने इम्पोर्टेंट बात कही है कि हम एक एग्रेसर की हमारे छवि नहीं है और पावर का इस्तेमाल जो होगा वो बिनाइन पावर का यूज होगा, तो उस ट्रैक पे हम ऑलरेडी हैं। तो उसमें दो बातें हैं, एक तो नेबरहुड को साथ लेके चलना है जैसी आपने बात की, दूसरी बात कमल जी ये एस्पिरेशंस हमारी हैं लेकिन हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है कि पावर हमारी नहीं होगी जब तक हम 8-10% ग्रो ना करें। अब विकसित भारत हमारा सपना है 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है, तो उसका 10% से ऊपर ग्रोथ रेट चाहिए हमें। तो अल्टीमेटली साथ साथ क्योंकि हर चीज जुड़ी हुई है, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की छवि, आपकी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, उसके पीछे एक वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि विजन तो हमारे सामने है लेकिन विजन पूरा करने के लिए पावर चाहिए, बिनाइन पावर चाहिए, उसके लिए हमें एक आर्थिक रूप में एक महाशक्ति बनना है, अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है मुझे लगता है, लेकिन इकोनॉमिक फोकस भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया है 2047 विकसित भारत, अब उसको डाउनस्ट्रीम हम कैसे करते हैं एक्चुअल पॉलिसी से और इम्प्लीमेंटेशन में, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन अगर हम कर पाए तो जो हमारी एस्पिरेशंस और विजन है लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमारा विजन साफ है और एक बिनाइन विजन है।
अगर हम भारत की अपनी अखंडता की बात करें तो जो भारत का अपना क्षेत्र है उसकी अखंडता के लिहाज से कितने आवश्यक है पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अनिल जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो अलगाववादी खतरे होते हैं उससे निपटने के प्रयासों के लिए यह आवश्यक होता है कि जिन देशों के साथ हमारी समुद्री सीमा है, जमीन है, वहां हमारा प्रभाव रहे, हमारे संबंध बेहतर रहे। उदाहरण के लिए जैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें तो वहां पर कई चुनौतियां हैं, म्यांमार के साथ सहयोग इसमें कहा जाता है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे कि जो भारत की सॉवरेनिटी है, अखंडता है, वो मजबूत रहे। तो कैसे आवश्यक है कि जो पड़ोसी देश हैं उनको विश्वास में लेते हुए उनके साथ संबंध बेहतर रहे।
ये जो हमारा जो पड़ोसी पहले वाली जो पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो ये है कि जब हम अपनी तरफ से जितनी भी उनकी मदद कर सकते हैं वो कुछ भी चीज नॉन रेसिप्रोकल होती है।
जी जी,
हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे, हम मार्केट वन साइड खोल देते हैं, हम उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जो भी चीज की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, जिस भी फील्ड में उनको जरूरत होती है, भारत की एक एक्सपेक्टेशन रहती है और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि उन देशों की सरहदों से, सीमाओं से भारत के अंदर कोई एंटी कंट्री, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो सब ना। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से भारत का बांग्लादेश के साथ में, भारत म्यांमार के बीच में, नेपाल और दूसरे मुल्कों के साथ में इसमें हमारा कोऑपरेशन काफी बढ़ा है और बड़ा सक्सेसफुल भी रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी एक स्टेट पॉलिसी है अपनी और वो ये पॉलिसी है कि वो टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं फॉरेन पॉलिसी का, तो उसके लिए हमें अपनी पूरी तरह से तैयारी करनी है। चीन जो है कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंटरनेशनली भी अदरवाइज, और चीन का इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में बहुत बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमारे नेबर्स जो हैं वो भी किसी हद तक काफी स्मार्ट हो गए हैं, वो भी दोनों मुल्कों के साथ में, चाहे वो हिंदुस्तान से और चीन से, दोनों के बीच में जो भी फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा लेते हैं। ये एक रियलिटी है, आप डिप्लोमेटिकली इसको किसी भी तरह से पुटअप करें लेकिन असलियत बात यही है। तो ये चीज चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे श्रीलंका में देखा है उन्होंने कि क्या हुआ वहां पर डेड डिप्लोमेसी का, तो ये जो चीजें हैं उनको खुद ही रियलाइज होगी और वो देश अपने आप ही किसी न किसी तरह से सोचेंगे कि किस चीज में उनका फायदा है, भारत के साथ रहने में कितना उनको लाभ है।
जी, एक एक आखिरी टिप्पणी आप दोनों की मैं भारत की सॉफ्ट पावर के नजरिए से लेना चाहूंगा, क्योंकि भारत हमेशा से इस बात पर भी अपनी विदेश नीति में तवज्जो देता रहा है कि जो दूसरे देशों के साथ उसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं या जो कला और दूसरे तरह के जो हम सॉफ्ट पावर में और आयामों को लाते हैं उनकी दृष्टि से भी संबंधों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इस नजरिए से भारत किस तरह से अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में विश्वास रखता है, आप बताएं अतुल जी। सबसे पहले
मुझे लगता है कि हमने अपनी सॉफ्ट पावर को जो है अंडर यूटिलाइज किया है। अगर आप यात्रा करें इंडोनेशिया की या थाईलैंड की, वियतनाम तक, कंबोडिया, तो आपको भारत का जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत सामने और बहुत पावरफुली सामने नजर आता है। तो मैंने कई बार अपने सेमिनार्स और डिबेट्स में यह कहा है कि हम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक पे तवज्जो देते हैं, लेकिन जियो कल्चरल डिप्लोमेसी ये बहुत ही जरूरी है।
बिल्कुल,
जियो कल्चरल एलिमेंट, क्योंकि हमारी ये हिस्टोरिकल स्पेस है, जियो कल्चरल स्पेस, राइट अप टू साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया तक, बुद्धिज्म जहां जहां गया उसके साथ साथ श्रीलंका, अफ्रीका में फिर जो एक्सपैट्स हमारे गए हैं, वो जो माइग्रेंट्स गए हैं, वेस्ट इंडीज तक हमारी ये सॉफ्ट पावर जो है, एक तरह से अभी हमने उसको लिवरेज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि इसको बहुत जरूरी है कि इनको इसको और जोड़े और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सॉफ्ट पावर के साथ साथ कल्चर के साथ साथ टूरिज्म आता है, कैसे इनको जोड़ा जाए उसके साथ। तो सिर्फ टूरिज्म एक आर्थिक दृष्टिकोण से हमें देखना नहीं है, कि टूरिज्म और उसके साथ इन्फ्लुएंस जो हमारी सॉफ्ट पावर की बढ़ोतरी होगी, दोनों को एक साथ जोड़ के हमें देखना है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो फिल्म्स हैं बॉलीवुड वगैरह बहुत चलती हैं, रशिया तक उनका बहुत पॉपुलैरिटी है, और इधर चाइना में मैंने देखा था ये फिल्म जो दंगल वगैरह, मैं वहां पोस्टेड था, मतलब चाइनीज के लिए ये बहुत बड़ी थी, इमोशनल कनेक्ट इमीडिएटली हुआ था वहां पर, और ज्यादा पैसा बनाया चाइना में कम्पेयर टू जो इंडिया में बनाया। तो ये सॉफ्ट पावर हमारी हर तरह से है, हिस्टोरिकल है और जियो कल्चरल है। इसको हमें एक तरह से एक बड़ी क्लियर कट नीति बना के और बहुत पॉजिटिव और तीव्रता से हमें इसको आगे लीवरेज करना है, क्योंकि ये एक यूनिक है, ये सॉफ्ट पावर बहुत देशों के पास नहीं है। मैं चीन का देखता हूं कि कन्फ्यूशियस तरह की एक सॉफ्ट पावर है जो कोरिया तक दिख जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और जिसमें एक्टिव से हम जुड़े हुए हैं, तो वो हमारी छवि है। तो ये हमको अपने जियो कल्चरल स्पेस को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की और प्रमोट करने की जरूरत है।
तो जैसा कि अनिल जी, अतुल जी ने कहा कि जियो कल्चरल डिप्लोमेसी को विस्तार देना और ज्यादा जरूरी है, आपको क्या लगता है अपने राजनयिक अनुभव से आप बताएं कि जो सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी है वो कितनी आवश्यक हो जाती है, खासतौर पर जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ तो इसका कितना ज्यादा महत्व है। हम अगर जिक्र करें तो जैसे भारत ने बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की है, इस तरह से दूसरे देशों में भी भारत अपने संस्कृति, कला और अपने जो विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का लगातार प्रयास करता रहा है। आप किस तरह से इस नजरिए से कूटनीति या रणनीति को देखते हैं?
देखिए, ये जो मैं अतुल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं और उन्होंने बड़ा डिटेल में इस बारे में बात कही, और मैं एक हमारे लिए जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि वो सब, और ये हमारा चीन के अगेंस्ट में जो मैं कहूंगा एक इम्पोर्टेंट हमारा प्लस पॉइंट है
जी,
कि ये सारे मुल्क जो हैं एक टाइम पे भारत के साथ कल्चरली सिविलाइजेशनली बहुत कनेक्टेड है। सॉफ्ट पावर जो है उसका प्रोजेक्शन इन एक स्ट्रेटेजिक मैनर में, एक तो चीज है कि अगेन वो एक्सेप्टेंस फ्लो होती है, धीरे धीरे होती है, अप्रिसिएशन होती है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जैसे प्रधानमंत्री ने शुरू किया, आज देखिए वो सारे देशों में मनाया जाता है, सारी दुनिया के अंदर में, तो लोगों को एक तरह से पता लगा कि ये भारत की एक सॉफ्ट पावर है। तो इससे एक अनजाने रूप में आप एक जुड़ जाते हैं उस मुल्क के साथ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, उसके कई सारे कल्चरल सेंटर्स हैं, उनको अच्छी तरह फंड करना चाहिए, वहां पर अपनी लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ऐसा देश में रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है उनके स्कूलों के अंदर में, और उसको स्ट्रेटेजिक रूप में देखा जा रहा है कल्चरल की तरह से। तो ये चीजें हमें भी जानना चाहिए, हमारे भारत में भी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है और क्या विरासत है, और उस बात का बाहर में भी बताना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक हम इम्पोज करेंगे किसी के ऊपर। किसी कल्चरल डिप्लोमेसी की, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जो खासियत है कि वो उसमें एक्सेप्टेंस बनती है, चाहे फूड के जरिए हो, कल्चर के, डांस, म्यूजिक, क्लासिकल, जो भी चीजें हैं ये सब हम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मेट में करना चाहिए, और उसमें हमारे को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें कल्चरल प्रोफेशनल मैनेजमेंट में।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अहम चर्चा में आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने रखे।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पड़ोसी देशों के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनीजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।